नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने की उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि पिपरहवा के प्रमाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित हैं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन की प्रमुख पहल प्रगति बैठक से परियोजनाओं और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है। श्री सोमनाथन ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि अब तक प्रगति की 50 बैठकें हो चुकी हैं और इसके अंतर्गत 85 लाख करोड़ रुपए की 3,300 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि इसके तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित 61 सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि 2015 में प्रगति के कार्यान्वयन के बाद से कोरोना, बैंकिंग और बीमा तथा जनधन योजना से संबंधित मुद्दों सहित 36 विभिन्न प्रकार की शिकायतों की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसमें लगभग 41,863 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इन परियोजनाओं से 2,58,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होने और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 34,000 नौकरियां सृजित होने की आशा है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रमुख सुधारों को लागू करना और कार्यान्वयन में तेजी लाना मोदी सरकार की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उच्च शिक्षित व्यक्तियों और पेशेवर लोगों का राष्ट्र और समाज के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होना चिंताजनक है। राजस्थान के उदयपुर में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का अभाव है तो केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है।
शिक्षित लोग भी आपराधिक गतिविधियों पर लिप्त पाए जाते हैं और आज व्हाइट कॉलर टेररिज्म जैसी चिंताजनक प्रवृत्तियां देशवासियों के सामने आ रही हैं, जहां अत्यंत शिक्षित लोग समाज और राष्ट्र के विरुद्ध कार्य कर। हाल में ही जो बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, वह करने वाले कौन था? डॉक्टर थे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है और भारत ये किस प्रकार करता है इसे कोई और तय नहीं कर सकता। चेन्नई में आईआईटी मद्रास टेक्नो एंटरटेनमेंट उत्सव शास्त्र 2026 के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन औषध निगरानी योगदान में भारत वैश्विक स्तर पर अब 8वें स्थान पर है, जबकि 10 वर्ष पहले ये 123वें स्थान पर था। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में औषध मानकों के बारे में भारत की आधिकारिक पुस्तक इंडियन फार्माकोपिया 2026 के 10वें संस्करण के विमोचन पर यह बात कही। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में सोमवार तक मौसम ठंडा रहने की संभावना है। इस बीच इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधरने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप के तीसरे चरण को रद्द कर दिया है। ग्रैप के दूसरे और पहले चरण के अंतर्गत प्रतिबंध जारी रहेंगे। सरकार ने लोगों से इन चरणों के नागरिक चार्टर का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है ताकि वायु प्रदूषण फिर से ना बढ़े और हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का शुभारंभ कल से इंडिया गेट के निकट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ। 3 दिन के इस सांस्कृतिक उत्सव में साहित्य, कला और विचार विमर्श का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। उत्सव का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। और खेलों में महिला हॉकी इंडिया लीग में कल रात रांची में रांची रॉयल्स ने JSW सूरमा हॉकी क्लब को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।